Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, लाइफस्टाइल डिजीज़ की इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसी बीमारी को लेने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा आम बन चुकी है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी है। वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ इतनी आम हो चुकी है ये बीमारी, आजकल तो बच्चों को भी डायबिटीज़ होने लगा है, तो ऐसे स्टेज पे आपके हिसाब से सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि डायबिटीज एग्जैक्टली है क्या?
डायबिटीज जी, जिसको कॉमनली हम शुगर की बीमारी भी कहते हैं, मधुमेह हिंदी में नाम है, मधुमेह।
मधुमेह,
हाँ जी, मधुमेह। अच्छा। तो ये भी कॉमन नाम है। आज भारत इस डायबिटीज की या मधुमेह रोग की कैपिटल है, राजधानी है। सबसे ज्यादा डायबिटीज पाई जाती इंडियंस में है, चाहे इंडिया में रहने वाले हैं या इंडियन जो अब्रॉड रहने वाले हैं।
अच्छा।
लगभग 10% लोगों को डायबिटीज है आज एडल्ट्स में। गांव में कम है, शहरों में ज्यादा है। ये भी शो करता है कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल का बहुत रोल है।
बिल्कुल,
क्योंकि गांव में जो है हम सिंपल फूड खाते हैं, रोज सैर करने को मिलता है, लाइफ इजी होती है, और शहरों की लाइफ स्ट्रेस्ड है।
करेक्ट,
राइट। तो वो जो है ये डायबिटीज में अगर हम कहें कि हम डायबिटीज कब कहें कि हमें डायबिटीज हो गई है।
करेक्ट।
तो अगर हम शुगर अपनी टेस्ट कराते हैं खाली पेट, 12 आवर फास्टिंग, रात को हमने 8 बजे खाना खाया, उसके बाद सुबह 8 बजे तक आप भूखे रहे, मतलब पानी पी सकते हैं बट डोंट टेक एनीथिंग व्हिच गिव्स यू कैलोरीज।
करेक्ट।
तो उसमें जब टेस्ट कराए, फास्टिंग शुगर आपकी अगर 126 से ज्यादा है और खाने के बाद वाली शुगर, खाने के 2 घंटे बाद, नाश्ता आपने कर लिया उसके 2 घंटे बाद टेस्ट कराया, उसके बाद 200 से ज्यादा है, तो हम कहेंगे हमें डायबिटीज हो गई है।
ओके,
राइट
जी।
अगर हमारा शुगर 100 to 126 है फास्टिंग, उसे कहेंगे प्री डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज होने वाली है।
एग्जैक्टली,
राइट। और अगर हमारे शुगर खाने के बाद वाली जो है 160 से 200 के बीच में है, तो इसे भी हम वो कहेंगे, इसे एक प्री डायबिटिक स्टेट कह देंगे।
ओके, राइट।
तो ये इसको हम, मतलब हमें अब तैयार, मतलब वी शुड बी रेडी, वी शुड स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस। इसका मतलब है कि हम लोग प्रिकॉशन लेना शुरू कर दें कि डायबिटीज हमें आ गई है, आने वाली है।
करेक्ट।
एक टेस्ट और हम कराते हैं, HbA1c कहते हैं इंग्लिश में, उसे ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन भी कहते हैं
जी।
और वो हमें 3 महीने की शुगर बताता है।
ओके।
अगर हमारा 6 तक है ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 6%, तो हमें डायबिटीज नहीं है। 6 से नीचे है अगर, तो हमें डायबिटीज नहीं है।
ओके।
अगर हमारा 6 से 6.5 के बीच में है, तो हम एक तरह से हम डायबिटीज के डेंजर जोन में आ गए, प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए कि हमें डायबिटीज हो सकती है
जी,
अगर हम प्रिकॉशन ना लें तो, राइट। और 6.5 के ऊपर हो गए तो डायबिटीज हो गई।
ओके,
राइट
जी।
और एम हमारा रहना चाहिए डायबिटीज होने के बाद कि हमारा HbA1c 7 से नीचे रहे।
अच्छा।
डायबिटीज 2 प्रकार की होती है
जी,
एक है type 1 डायबिटीज, एक type 2 डायबिटीज।
ओके।
type 1 डायबिटीज यंग एज में होती है, 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 11 साल, 12 साल, 15 साल में आपको शुगर बहुत बढ़ जाती है। मतलब आपको पता कैसे लगता है बच्चे को?
कैसे?
बहुत ज्यादा बाथरूम बार बार जाएगा, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, और बहुत ज्यादा खाना खाता है तो भी अंडरवेट होता जाता है।
ओ।
तो भी सूखता जाएगा बॉडी। तो ऐसी निशानी से जब बच्चे को सिम्टम आए, तो तुरंत हमें जानना चाहिए कि हमारे बच्चे को शायद डायबिटीज हो गई। उसका कारण क्या है कि हमारे पेनक्रियाज जो है, हमारी जो एक ग्रंथि है, एंडोक्रिन ग्लैंड है, वो उसमें पेनक्रियाज में अल्फा सेल होती है, बीटा सेल्स होती है। तो बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है।
करेक्ट।
अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, ग्लूकागन शुगर बढ़ाता है और इंसुलिन शुगर कम करती है।
ओके,
इंसुलिन वो करेंसी है जो उस ग्लैंड से निकल करके हमारी बॉडी के हर सेल में ब्लड के द्वारा पहुंच जाती है, और सेल्स में ग्लूकोज तब जाएगा अगर सेल के पास इंसुलिन होगा तो।
ओके,
ये तो करेंसी है, ऐसे मार्केट में सब कुछ बिकने को आया हुआ है,
करेक्ट,
अवेलेबल है। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप उसे खरीद नहीं सकते, आप उसमें से कुछ भी ले नहीं सकते, पैसा है तो आप ले सकते हैं।
करेक्ट,
तो आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं है, आपके सेल्स के पास इंसुलिन नहीं है कोशिकाओं के पास, तो शुगर ब्लड में 500 होगी किंतु आपकी सेल्स में एनर्जी नहीं जाएगी, ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगा, तो आप बहुत वीक महसूस करेंगे। शुगर ज्यादा हो गई ब्लड में तो आपको बार बार बाथरूम जाने की फीलिंग आएगी।
ओके,
क्योंकि ब्लड से निकलना चाहिए।
करेक्ट,
और ज्यादा बाथरूम जाएंगे प्यास ज्यादा लगेगी।
करेक्ट,
और शुगर ज्यादा है सेल्स में ताकत नहीं है तो हम खाने को दिल करेगा बार बार।
ओके,
तो आपस में कनेक्टेड है ना सब,
एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वो एक साइकिल की
तरह है। रात में बार बार, रात में ही बार बार बाथरूम जाएंगे। तो ये निशानी है आपको, अगर आपके बच्चे को ऐसे भी हो रहा है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं, शुगर चेक कराएं, यूरिन टेस्ट कराएं, तो आपको पता लगेगा उसको डायबिटीज है कि नहीं।
ओके,
राइट, तो ये है टाइप 1 डायबिटीज, को हम इंग्लिश में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं।
ओके,
क्योंकि इस बीमारी में आपके जो पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो खत्म हो जाती है।
ओके,
ऑलमोस्ट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो ये जो है डायबिटीज जो होती है, इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, इसमें गोलियां काम नहीं करती, कोई भी दवाई काम नहीं करती, तो इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है, राइट, और फिर सारी उम्र ही इंसुलिन लेनी पड़ती। दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज है जिसमें आपको बड़ा होने के बाद 20 साल की उम्र के बाद आपको डायबिटीज आने शुरू होती है, मतलब इसमें आपके सेल्स में इंसुलिन है किंतु वो निकलती कम है।
अच्छा,
राइट,
जी,
उसमें दवाइयां काम कर सकती हैं। दवाइयां काम कर सकती हैं, अगर दवाइयां काम कर देती हैं, इफेक्ट कम होता, फिर बाद में इंसुलिन भी लेनी पड़ सकती है।
अच्छा,
लेनी पड़ सकती, किंतु अदरवाइज दवाई भी काम करती।
पापा साहब, ये तो हमने जान लिया कि इसके कौन से टाइप्स होते हैं, लेकिन अब मैं जानना चाहती हूँ कि डायबिटीज जो बीमारी है उसमें टाइप 1 और टाइप 2 में अगर इसका मेन कॉज क्या होता है, किस कारण से हमें डायबिटीज होता है?
सी, डायबिटीज बेसिकली जीन्स का बड़ा भारी रोल है, हेरिडिटरी। अगर आपके माता पिता को डायबिटीज है, दोनों को, तो आपको बहुत अधिक चांस है डायबिटीज होने के।
अच्छा,
अगर सिंगल पेरेंट को डायबिटीज है तो चांसेस कम हो जाते हैं, मदर को या फादर को, तो आपको कम चांस होते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स को है तो बच्चों को अधिक चांस है कि यंग एज में ही डायबिटीज आपको आ जाए।
जी,
और टाइप 2 डायबिटीज का भी यही कि अगर जैसे बता दिया मैंने, उस तरह से आपको डायबिटीज आएगी। पर ये जीन्स जो है इम्पॉर्टेंट हैं, किंतु जीन्स मैंने पहले भी ये बात कही है कि सीड्स की तरह होते हैं।
जी,
अगर आपके माता पिता में बीमारी है और जीन आपके अंदर है, तो अगर आप अपनी टीम को पॉजिटिव रखें, टीम माना मन, माइंड हैज गॉट 4 एस्पेक्ट्स।
अच्छा,
Thoughts, emotions, attitudes and memories, same team कहते हैं।
Thoughts, emotions, attitude and memories,
right?
Okay.
तो चार हो गए ना, इसको पहला अक्षर लेंगे तो क्या बनेगा? टीम बनेगा ना?
टीम, बिल्कुल।
अगर आपकी टीम पॉजिटिव रहती है शुरू से, मतलब हर समय पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें इमर्ज करते हैं, एटीट्यूड सबके प्रति अच्छा रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, एक्सेप्टेंस की आदत है, एक्सेप्ट करते हैं चीजों को as they are।
जी,
भावनाएं सबके प्रति अच्छी रखते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो आपकी जो ये जो जीन्स हैं सप्रेस रहते हैं।
और मेमोरी, आपने कहा मेमोरी का क्या रोल है?
स्मृति, यादें जो रिकॉर्ड हो गई मेमोरीज ना पहले से।
हाँ जी, तो वो अच्छी रहे, ऐसे
मतलब पॉजिटिव रखें।
अच्छा, पॉजिटिव रखें,
अच्छी अच्छी बातों को ही इमर्ज करें।
ओके, मेमोरी में से,
मेमोरी में से।
अच्छा,
आपकी जो मेमोरी अंदर स्टोर है,
हाँ जी,
उसमें अच्छी बातें देखें, अच्छी बात देखेंगे तो अच्छी बातें इमर्ज होंगी।
करेक्ट,
अच्छे संग में रहेंगे तो अच्छी बातें इमर्ज होंगी।
बिल्कुल,
अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छी बातें इमर्ज होंगी। हेल्दी फूड खाएंगे तो अच्छी बातें इमर्ज होंगी, जैसा अन्न वैसा मन होगा।
करेक्ट,
राइट, तो अगर आपका संग और अन्न अच्छा है तो आपको नेचुरली अच्छी मेमोरीज इमर्ज होंगी,
ऑटोमेटिकली टीम स्ट्रांग हो जाएगा,
राइट, अच्छी मेमोरी स्ट्रांग होंगी।
बिल्कुल,
अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, जो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, गलत बोलते हैं दूसरों के बारे में,
जी,
गलत बातें सुनते रहते हैं, गलत बातें देखते रहते हैं, राइट
राइट,
जो चाहे बोल देते हैं, जो चाहे खा लेते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, जैसा अन वैसा मन, फिर आपका मन भी नॉन वेज हो जाएगा ना, नॉन वेज बना हिंसक हो जाएगा ना,
हिंसक,
एंगर वाला, ईगो वाला, अटैचमेंट वाला, ग्रीड वाला हो जाएगा,
राइट।
तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें चेंज करनी पड़े। तो पहली बात तो यही जीन्स है, उसके बाद पॉजिटिव टीम अगर है तो आपको चांसेस है कि जो डायबिटीज आने वाली थी उसको आप डिले कर सकते हैं।
ओके,
नेगेटिव टीम है तो जो बीमारी आपके 30 साल में आने वाली थी वो 20 साल में आ जाएगी।
अच्छा,
तो ये टीम को मैं शुरू में इस बार ले लिया, तो ये एक टीम, और फिर हमारी माइंड, माइंड मतलब, फिर उसके बाद डाइट। जो लोग ये देखने में आया है, जो लोग अधिक फ्राइड फास्ट जंक फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनको अधिक मात्रा में डायबिटीज होती है।
ओके,
और जो वेजिटेरियन भी हैं कि तो हर चीज में उसमें फ्राई कर लेते हैं, गलत तरह से उसकी जो वैल्यू खत्म कर देते हैं, जला के या तेल लगा के
ओवर फ्राई करके,
ओवर फ्राई करते हैं, या उसको ओवर फ्राई, छोड़िए फ्राई काफी है, ओवर फ्राई तो बहुत ही डेंजरस है,
बहुत ज्यादा है जी,
उससे भी आपको जल्दी डायबिटीज आ जाएगी
जी।
कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, शुगर्स बहुत ज्यादा खाते हैं, सिंपल शुगर ज्यादा लेते हैं तो आपको आ जाएगी, है ना। तो ये जो है डाइट में, समय पर नहीं खाते हैं, चबा चबा के नहीं खाते हैं, एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज होने का, चबा के ना खाना।
अच्छा, मतलब पूरी, जैसे आपने पहले भी कहा था एक बार कि च्यू करके खाएं प्रॉपर्ली, ओके,
तो ये बहुत जरूरी है
जी।
और फिर हमारी प्रॉपर नींद ना होना,
ओके। लेकिन एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि बहुत ज्यादा अगर डायबिटीज हाई होता है तो नींद भी नहीं आती है,
नहीं आएगी,
लेकिन फिर तो ये साइकिल जैसा है, क्योंकि अगेन नींद पूरी होएगी नहीं तो फिर उससे डायबिटीज और बढ़ेगा, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसमें सोल्यूशन क्या है?
आपको गलत खाने को भी दिल करेगा,
हाँ, मीठा खाने का दिल करेगा,
मीठा खाने का दिल करेगा,
बिल्कुल,
अगर मन में बिटरनेस है तो स्वीटनेस, सिर्फ स्वीट खाने की कोशिश करेंगे,
हाँ,
जैसे इसको कहते हैं ना, एक इसमें जो से वो हुआ है कि व्हेन यू फील यू हैव नो स्वीटनेस लेफ्ट इन योर लाइफ, जब आपके जीवन में मिठास, हाँ, संबंधों में मिठास या आपके अपने विचारों में मिठास कम हो जाती है
जी,
तो आपके अंदर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है,
अच्छा,
वो कॉर्टिसोल जो हार्मोन निकलता है ज्यादा, एपिनेफ्रिन ज्यादा निकलता है, एड्रेनालिन जिसे कहते हैं कॉमन भाषा में, वो ज्यादा निकलता है, तो लीवर से वो ग्लूकोज निकलता है, लीवर से ग्लूकोज निकलता है, शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन ज्यादा निकलता है बीटा सेल से, और इंसुलिन निकलता है फिर शुगर कम होती है, और फिर शुगर कम होती है फिर ज्यादा उसको ठीक करने के लिए खाते हैं हम, मीठा खाते हैं, और वो हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें शुगर कम हो रही होती है तो हम फील करते हैं जल्दी से चबाने की आवश्यकता ना हो, तुरंत शुगर हमारी बढ़ जाए, तो वो उसके लिए हम कैसा खाएंगे, चीनी खा लेंगे, कुछ मीठी चीज खाएंगे, मिठाई खा लेंगे, फास्ट खाएंगे और बिना चबाए खा जाएंगे, जैसे जल्दी से गल्पिंग करने की फीलिंग होती है कि मेरी शुगर बढ़ जाए, आई वॉन्ट टू फील स्ट्रांग, राइट, तो शुगर बढ़ेगी, फिर उससे वेट भी बढ़ेगा जैसे खा रहे हैं, राइट, और फिर ये स्ट्रेस आपको लगातार रहती ही है, तो फिर वही कॉर्टिसोल निकलता रहेगा, तो ये साइकिल एक विशेष साइकिल बन जाता है, जो आपको डायबिटीज भी, शुगर भी बढ़ी रहती है, इंसुलिन बढ़ा रहता है, इंसुलिन बढ़ने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है,
करेक्ट,
और इंसुलिन बढ़ने से ही फिर हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन है तो भी शुगर बढ़ी है, तो हमारे लीवर में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ने लगता है,
करेक्ट,
एलडीएल बढ़ने लगता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है,
ओके,
खून गाढ़ा होने लगता है, तो मतलब एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, और तब हमारे जीन्स में इफेक्ट आने लगता है,
ओके,
तो जीन्स हमारे सप्रेस, जो सप्रेस जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जाते,
एक्सप्रेस हो जाते हैं,
तो हमने तो देखा है हमारे पास जो हार्ट का जो प्रोग्राम होता है, 3D, 3 डिमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है, कि डायबिटीज जो अपने स्ट्रेस को मॉडिफाई कर लेते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं, उनकी 70-80 यूनिट भी, जो एक महीने में, एक दिन में 80 यूनिट भी इंसुलिन ले रहे होते हैं, एक हफ्ते में छूट जाते हैं, तो ये इफेक्ट होता है आपको लाइफस्टाइल का,
इतना फर्क पड़ेगा एक हफ्ते के अंदर, तो ये
क्योंकि
तो
स्ट्रेस का फैक्टर आपने निकाल दिया, डाइट आपने चेंज कर दी, सुबह शाम सैर शुरू करा दी,
हाँ,
और सोने के पहले ऑडिट करना शुरू कर दिया, समय पर सोना, समय पर उठना शुरू हो गया, सब एडिक्शन छूट गए,
यू फिट,
इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है,
ओके,
थोड़ी इंसुलिन में शुगर कंट्रोल होने लगती है, पहले क्या था,
ज्यादा
शुगर लेने के बाद भी, ज्यादा इंसुलिन निकलने के साथ भी हमारी शुगर बढ़ी हुई थी
जी,
इंसुलिन वाज नॉट इफेक्टिव,
करेक्ट,
अभी इंसुलिन स्ट्रेस खत्म हो गया, आपने वो ट्रिगर निकाल दिया, तो ट्रिगर निकालने से सब कुछ कंट्रोल में आ गया और फिर थोड़ी इंसुलिन में शुगर कंट्रोल होने लगी।
तो ये रूट कॉज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो है स्ट्रेस, इसके बारे में तो कोई भी डॉक्टर ने आज तक बोला नहीं हमें, तो हम कोशिश तो करते थे कि इंसुलिन के थ्रू उसे क्योर कर सके, लेकिन होता नहीं था। आज ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि किस तरह से स्ट्रेस रोल प्ले करता है डायबिटीज में।
यस, क्योंकि इंसुलिन जब निकलती ज्यादा है या आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हैं,
हाँ जी,
तो वो हमारी जो एंडोथेलियम है, हमारी जो आर्टरीज की एंडोथेलियम है,
हाँ जी,
उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है।
ओके,
तो हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है।
ओह, तो अगेन डायबिटीज भी है और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है,
शुगर भी बढ़ गई,
शुगर भी बढ़
गई और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, और साथ साथ फिर मोटापा भी बढ़ गया क्योंकि आपको ज्यादा खाने को दिल करती है हमेशा, और फिर कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो गया।
ओह माय गॉड, ये तो पूरी
चार चीजें इकट्ठी आ गई। इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं।
अच्छा,
कि आपका डिसमेटाबॉलिज्म हो रहा है, डिसमेटाबॉलिज्म हो रहा है मतलब बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब हो गया। डायबिटीज में बॉडी की हर सेल इफेक्ट होती है।
अच्छा,
ऊपर से लेकर नीचे तक बाल भी इफेक्ट होते हैं, आंखों पे भी असर आता है, हर चीज पे, स्किन पे भी असर आता है, आपकी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स पे असर आता है, रेटिना पे इफेक्ट आता है, आपके हार्ट पे असर आता है, आपके लीवर पे इफेक्ट होता है, आपके पेनक्रियास पे इफेक्ट होता है, आपके किडनीज पे इफेक्ट होता है, आपकी नर्व्स पे इफेक्ट होता है, स्किन पे इफेक्ट होता है, मसल्स पे इफेक्ट होता है।
कितनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सिर्फ एक डायबिटीज की वजह से।
मतलब बॉडी की कोई सेल ऐसी नहीं जिस पे इसका असर ना हो, और आपके मन पे भी इंटर्न मन से हार्ट की डायबिटीज आती है, और फिर मन के इफेक्ट आने, मन पे इफेक्ट आने, डायबिटीज होने के बाद मन आपका बुझ जाता है।
मन बुझ जाता है
अर्थात? मन अर्थात आप जैसे डिप्रेस महसूस करते हैं,
ओके, लो महसूस करते हैं,
लो एस्टीम फील, तो आप मतलब, और डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों चीज आपको हो जाए, इसको बोलते हैं डायबेसिटी। ये वर्ड आ गया,
डायबेसिटी एंड डायबिटीज
दोनों कंबाइन हो जाए, डायबिटीज आज इतनी खतरनाक है कि आज उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज इक्विवेलेंट मानते हैं, CAD इक्विवेलेंट, मतलब भले आपको हार्ट की बीमारी अभी तक नहीं आई है, तो डायबिटीज आ गई माना आपको हार्ट की बीमारी भी आ गई, इतना खतरनाक मानते हैं।
डॉक्टर साहब, डायबिटीज की वजह से कौन से ऐसे मेजर ऑर्गन्स हैं जिन पर उसका असर पड़ता है, और उसको किस तरीके से क्योर करें?
डायबिटीज का बेसिकली क्या है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं
जी,
हमारे जो जिनमें खून बहता है, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, तो ये मतलब पूरी जैसे पूरा हमारा वेस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम,
करेक्ट,
इस पे ज्यादा असर पड़ता है। एक तो मैक्रोवेस्कुलर माना हमारी जो बड़ी बड़ी आर्टरीज हैं उन पे असर पड़ता है, और माइक्रोवेस्कुलर जो हमारा माइक्रोवेस्कुलर जो बहुत ही फाइन आर्टरियोज कैपिलरीज हैं उन पे भी असर पड़ता है।
अच्छा,
तो हम इस तरह से बांट सकते हैं मैक्रोवेस्कुलर एंड माइक्रोवेस्कुलर।
ओके,
तो मैक्रोवेस्कुलर जिससे हमारी कॉर्नियल आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने लगते हैं, डायबिटीज वालों को अधिक एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, जो अंदर की लाइनिंग है ब्लड वेसल की लाइनिंग, उसको एंडोथेलियम कहते हैं।
अच्छा,
और वो उससे एक नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस निकलती रहती है जिससे कोलेस्ट्रॉल अंदर नहीं जा सकता, सेल्स उस दीवार के अंदर नहीं एंटर कर सकते, और आर्टरीज ब्लड चिपकता नहीं है एंडोथेलियम को, इनर लाइनिंग को। किंतु डायबिटीज अगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, शुगर लेवल बढ़े हुए, तो क्या होता है कि आपकी जो एंडोथेलियम काम करना बंद कर देती है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड निकालना बंद कर देती है, तो फिर आपकी जो कोलेस्ट्रॉल जो बह रहा है ब्लड में
जी,
बैड कोलेस्ट्रॉल, वो इसके अंदर एंडोथेलियम क्रॉस करके अंदर जाने लगता है, और फिर हमारी आर्टरीज में ब्लड वो कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है आर्टरीज के अंदर, तो हमारी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है।
ओके,
राइट
जी,
तो ये इसमें देखने में आया कि डायबिटीज के लोगों को लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं, डिफ्यूज डिजीज होती है, आर्टरीज नैरो हो जाती हैं कि उनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास भी नहीं कर पाते हैं, और कर भी लें तो वापस ब्लॉक हो जाती है, बाईपास करने के बाद भी बाईपास फेल हो जाते हैं
बिकॉज ऑफ डायबिटीज,
इंसुलिन मतलब हमारी अगर वो एंजियोप्लास्टी करें तो जल्दी फिर बंद हो जाती है। तो ये जो है इसकी एक, इसको मैक्रोवेस्कुलर कहेंगे कि हमारी जो बड़ी बड़ी आर्टरीज, हार्ट की जैसे आर्टरीज है, ब्रेन की आर्टरीज है, वहां भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है।
ओके,
गर्दन की आर्टरीज है, इनमें भी कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ये भी ब्लॉक हो सकती है, पीछे की आर्टरीज है, वो भी ब्लॉक हो सकती हैं, राइट। ऐसे ही हमारी किडनी की आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो सकती हैं, पैरों की आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो ये जो है हमारी जो मेजर आर्टरीज हैं
वो
ब्लॉक होने लगती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल डिप मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होता है,
ओके,
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमता है डायबिटीज़ वालों को, इसलिए इसको सीएडी इक्विवेलेंट भी कहते हैं। अगर आपको डायबिटीज डायग्नोज हो चुकी है तो समझिए कि आपको हार्ट की बीमारी भी साथ साथ आ गई।
ये तो एक तरीके की डर पैदा हो जाएगा हम सभी के सारे ऑडियंस के अंदर कि अगर डायबिटीज हो गया तो
डर की बात नहीं है, इससे हमें ये इम्पोर्टेंट समझनी चाहिए कि कितना जरूरी है हमारी शुगर लेवल को नॉर्मल रखना।
ओके,
कैसे रखना है वो अगले एपिसोड में बात करेंगे
जी।
उसके लिए क्या क्या करना होगा, हमें क्या परिवर्तन अपनी लाइफ में करना होगा, क्या दवाइयाँ लेनी होंगी, वो अगले एपिसोड में बात करेंगे। किंतु अभी हम ये समझ लेते हैं कि हमें डायबिटीज होने के बाद रिलैक्स नहीं होना है, रिलैक्स ना केयरलेस नहीं होना है,
केयरलेस
केयरफ्री रहना है, सब प्रिकॉशंस लेकर के, राइट, केयरफ्री रहना है, टेंशन में भी नहीं आना है बल्कि टेंशन फ्री होना है, राइट। तो ये जो है हमको करना बहुत आवश्यक है
जी।
तो ये तो हमारी जैसे एक हमें मैक्रोवेस्कुलर वाली बात हो गई, ठीक है। और फिर माइक्रोवेस्कुलर छोटी छोटी आर्टरीज जहाँ डिफेक्ट होती हैं, जैसे रेटिना की आर्टरीज अफेक्ट हो जाती हैं,
ओके,
रेटिना की आर्टरीज में वो एक्सुडेट्स हैं, हेमरेजेस होने शुरू होते हैं, नई नई आर्टरीज छोटी छोटी आर्टरीज से बनने लगती हैं ना, वो फिर वो फट जाती हैं, फिर हेमरेज हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है, फिर लेजर थेरेपी कराओ, ऐसी वापस आके आती नहीं, वापस
ओरिजिनल जो है वो नहीं
आती, कितनी नेचर कितनी लेजर थेरेपी कराओ आप तो उससे पूरी आंख ठीक नहीं होती कभी। तो कितना जरूरी है कि अपने शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखना,
करेक्ट,
HbA1c को 7 से कम रखना कितना जरूरी है। ऐसे ब्रेन की छोटी-छोटी आर्टरीज, छोटा माइक्रोवैस्कुलर सर्कुलेशन
जी,
वो डिस्टर्ब होने लगता है तो वहाँ भी हेमरेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्लॉट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे हमारी किडनी की आर्टरीज, वहाँ का माइक्रोवैस्कुलेचर खराब हो जाता है, तो वो खराब हो गया तो क्या होगा, किडनी फेल हो जाती है। एक बहुत बड़ा कारण किडनी फेलियर का, क्रॉनिक रिनल डिजीज, CKD भी कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज,
अच्छा,
तो उसका मेजर कारण डायबिटीज है।
ओ,
फिर उसको पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ता है, फिर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराओ, 3 बार डायलिसिस कराओ, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट भी इतना सक्सेसफुल नहीं होता डायबिटीज। तो मतलब द ओनली आंसर इज टू ऑल द प्रॉब्लम्स इज प्रॉपर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज।
बिल्कुल,
कैसे करना है नेक्स्ट एपिसोड में आएगा
जरूर।
और फिर जो है हमारे अंदर जो हमारी जो नर्व्स हैं
जी,
जो पैरों में जा रही हैं, हाथों में, सारी बॉडी में जा रही हैं,
बिल्कुल,
तो उसमें क्या होता है, जो स्पेशली पेरिफेरल नर्व्स हैं, जैसे हाथ हैं हमारे और पैर है नीचे
जी,
जो एंड जहां पर हमारी नर्व्स एंड हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, उसकी ब्लड सप्लाई पे इफेक्ट आने लगता है, बाजा वेजोरम होते हैं उसमें, मतलब छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं वो बंद होने लगती हैं, उससे फिर ब्लड सप्लाई वो नर्व्स का सेंसेशन खत्म होने लगती है, ऐसा था पैरों में चींटियाँ चल रही हैं, सुन हो गए हमारे पैर, चलते टाइम कई बार ऐसा लगता है जैसे हम गद्दे पर चल रहे हैं, चप्पल की कई बार फीलिंग पता लग खत्म हो जाती है, चप्पल निकल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं ग्लोव एंड स्टॉकिंग टाइप ऑफ एनेस्थेसिया, ग्लोव ग्लोव माना ये ग्लव्स हो गए और स्टॉकिंग जराब
सॉक्स,
तो वो सॉक्स हमारी यहाँ यहाँ तक केस से सेंसेशन खत्म हो जाते हैं। वो सेंसेशन खत्म होने से हम चलते हैं, पैर में कुछ भी चुभ जाएगा वो घाव ठीक ही नहीं होगा, कुछ भी आपको पता नहीं लगेगा कुछ चुभ गया,
ये डायबिटीज में ये मैंने सुना
चोट है। चोट हो गई, डायबिटिक फुट हो जाता है
जी जी जी,
हाथ सुन हो जाएंगे, आपको कुछ गर्म ठंडे का पता नहीं लगेगा, तो ये जो है हमारा ये भी नर्व्स खराब हो जाते हैं, राइट, लीवर पे स्वेलिंग आ जाएगी, लीवर सूज जाएगा क्योंकि उसमें फैटी लीवर बन जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती, फैट को मेटाबोलाइज करना शुरू कर देती है, वो लीवर में ही होता है, तो लीवर से फिर वो लीवर में स्वेलिंग आ जाती है, तो इस तरह से हमारा लीवर खराब हो जाता है, फिर बाद में सिरोसिस हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाता है,
करेक्ट,
इसी तरह से हमारी और भी जैसे हमारी और अंगों पर भी इसका असर पड़ता है,
करेक्ट,
हमारे हार्ट पर असर पड़ता है, ओवरऑल हार्ट से डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, हार्ट की मसल्स वीक हो जाती है,
इतनी सारी चीजें सिर्फ एक डायबिटीज की वजह से,
हमारे स्टमक में गैस्ट्राइटिस हो जाता है,
करेक्ट,
स्वेलिंग आ जाती है स्टमक के अंदर, हाथों में स्वेलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ डायबिटीज, तो डायबिटीज का
इतनी क्रॉनिक डिजीज है ये,
इतना बहुत बहुत आवश्यक है कि डायबिटीज़ को हम समय पर पहचानें और समय पर उसका कहाँ का डैमेज हो चुका है उसको असेस करें
जी,
और फिर उसका इलाज करें।
डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि किस तरह से हम अपने आप को, अगर हम डायबिटिक हैं तो हमें इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारी और भी बीमारियों से हम ग्रसित हो सकते हैं। हम ज़रूर ध्यान देंगे और अगला एपिसोड हम ज़रूर आपके साथ, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, आज हमने डायबिटीज़ इस बीमारी के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की, जिसमें सबसे पहले हमने उसके प्रकार जाने, फिर उसके कॉज को जाना, साथ ही साथ हमने किस तरह से हम डायबिटीज़ के साथ कोप अप कर सकेंगे उसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।